छठवीं कारिका है बाक्यपदी की, भेदानाम बहुमार्गत्वम कर्मण्येकत्र चांगता शब्दानाम यत शक्तित्वम तस्य शाखासु दृश्यते। यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि महर्षि कल्पित जो वेद की अनेकों शाखाएं हैं, वह शाखाएं परस्पर क्या हैं, भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग वेद की शाखा है। तो फिर एक कर्म में, यहाँ कर्म का अर्थ समझना है यज्ञ कर्म, तो एक यज्ञ कर्म में अनेक शाखाओं का जो है ना समावेश कैसे होगा। समावेश होना मतलब एक कोई हम यज्ञ कार्य कर रहे हैं और उसमें अन्य अन्य शाखाओं के मंत्रों का, अन्य अन्य शाखा के शब्दों का प्रयोग जो है ना हम कैसे एक साथ कर सकते हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि एक साथ प्रयोग कब होगा, जब भिन्नता नहीं रहेगी, जब समानता होगी। और यहाँ तो क्या है कि वेद की अन्य वेद में परस्पर जो है बहुत भिन्नता है, इस शाखा के मंत्र कुछ अलग हैं, उस शाखा के मंत्र कुछ अलग हैं, उस शाखा के मंत्र कुछ अलग हैं। तो जब शाखा भेद से मंत्र भेद हो जा रहा है तो एक कर्म में उन सबों का कैसे समावेश हो जाएगा, हो पाएगा, कैसे जो है हम अन्य शाखा का के मंत्र का भी हम यज्ञ में प्रयोग कर पाएंगे। इस पर जवाब दे रहे हैं कि भेदानाम बहुमार्गत्वम, यद्यपि वेद ये जो शाखा भेद है उसमें बहुमार्गत्व है, बहुमार्गत्व है मतलब भिन्नत्व है, अलग अलग पृथक पृथकत्व है। तो पृथक पृथक तो होने पर भी एकत्र कर्मणि च अंगता, ताकि एक कर्म में सबकी अंगता संभव है। अंगता मतलब समावेश, सब सारे ये सारी शाखाओं के मंत्रों का जो है ना विनियोग एक साथ संभव है। यद्यपि शाखा परस्पर भिन्न है फिर भी उनके मंत्रों का एक कर्म में अंगता जो है यह संभव हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर चर्चा क्रम में आप ये भी जान लीजिए कि ये शाखाएं जो हैं वेद की आपने पढ़ी सुनी होंगी, फिर से मैं भी एक बार बता देता हूँ कि ये जो चार वेद हैं उसमें एक शतम अध्वर्जु शाखा है, ये यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं 101 शाखाएं, और सहस्र वर्तमा साम वेद की 1000 शाखाएं, और एक विंशतिधा बाहवृच्यम, बाहवृच्य कहते हैं ऋग्वेद को, ऋग्वेद की 21 शाखाएं, और नवधा अथर्वणो वेदहा, अथर्व वेद की जो है ना 9 शाखाएं। इस तरह से अलग अलग शाखाओं में वेदों को जो है ना बांट दिया गया है, पर अलग अलग होने पर भी एक कर्म में, एक यागिक कर्म में इन लोगों की अंगता हो सकती है, इन लोगों का समावेश एक साथ जो है हो सकता है। तो फिर प्रश्न उठा कि जब एक साथ समावेश हो सकता है तो फिर इतना जो है ना भेद करने की क्या आवश्यकता थी महर्षियों को, क्यों इतनी शाखाओं में जो है वेद के मंत्रों को ऋषियों ने बांटा। तो इसका जवाब दूसरी पंक्ति में देते हैं कि शब्दानाम यत शक्तित्वम तस्य शाखासु दृश्यते, कहा कि उन शाखाओं में ये जो अनेक शाखाएं हैं उन शाखाओं में शब्द के जो प्रयोग हुए हैं ना, वो जो शब्द हैं वो यत शक्ति हैं। ये यत शक्ति क्या होता है, तो यत माने नियत, नियत शक्ति है। यहाँ तात्पर्य ये है कि अस्याह शाखायाह अयम शब्दः उदात्त स्वरयुक्तः इमम अर्थम बोधयति, अस्याह शाखायाह अयम अस्य मंत्रस्य अयम शब्दः एतत् स्वरयुक्तः इमम अर्थम बोधयति। इस तरह से शक्ति का नियमन किया गया है कि इस शाखा में ये शब्द इस स्वर से युक्त होकर के इस अर्थ को ही बताएगा, दूसरे अर्थ को नहीं बताएगा। यह इस कारण से, ये नियत शक्ति शब्द होने के कारण, क्योंकि सारे शब्द जो हैं वो सारी शाखाओं में एक जैसे अर्थ को नहीं बताते हैं। किसी शाखा में वही शब्द जो है भिन्न अर्थ को बताता है, तो किसी शाखा में वही शब्द जो है भिन्न अर्थ को बताता है। तो ये जो भिन्न भिन्न अर्थ को बताता है वो क्यों बताता है, तो आपने भूषण पढ़ा है, आप जानते हैं कि शक्ति के कारण ही जो है ना अर्थ का बोध होता है। तो शक्ति भेद है, अलग अलग है शब्दों का, इसीलिए उस शक्ति भेद के कारण ही, नियत शक्ति होने के कारण ही जो है मतलब अनेकों शाखाओं में भेद का जो है वर्गीकरण किया गया। तो शक्ति में भेद है शब्द में, और इस कारण से अर्थ भेद भी है, शब्द भेद भी है, फिर भी यागिक कर्म में एक साथ जो है सभी का समावेश हो सकता है। अब सातवीं कारिका को देखते हैं कि स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टादृष्ट प्रयोजनाः तमेवाश्रित्य लिंगेभ्यो वेद विधिभिः प्रकाशिताः। अब यहाँ प्रश्न है कि वेदाः प्रमाणम्, आपने भी सुना होगा कि वेद जो है ना वह प्रमाण होता है, बल्कि ये कहो कि वेदाः एव केवलम् प्रमाणम्, वेद ही जो है ना केवल एक प्रमाण होता है, उसके अतिरिक्त कोई जो है ना दूसरा प्रमाण नहीं होता है। तो जब वेद ही प्रमाण होता है तो फिर ये स्मृतियाँ क्या करती हैं? स्मृति का आपने नाम सुना होगा, कम से कम मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा। दो स्मृतियाँ जो है ना बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है मनुस्मृति और एक है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे स्मृतियाँ बहुत हैं, लेकिन ये दो स्मृतियाँ मुख्य हैं, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। और इसको भी जो है ना प्रमाण के तौर पर हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जब कभी धर्मशास्त्र की बात होती है, जब कभी विधि व्यवस्था की बात होती है, तो उस समय में हम जैसे श्रुति का प्रमाण देते हैं, वेद का प्रमाण देते हैं, उसी तरह से स्मृति का भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ सवाल यही है कि वेदाः प्रमाणम्, प्रमाण तो वेद होता है, तो फिर ये स्मृतियाँ जो हैं कैसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, इसमें किस तरह से प्रामाणिकता आ पाती है, इसका जवाब सातवीं कारिका में बाक्यपदी में दिया गया। कहते हैं कि स्मृतयो बहुरूपाश्च, स्मृतियाँ जो हैं वो बहुरूप होती हैं, बहुरूपा होती हैं, अनेक होती हैं, दृष्टा दृष्ट प्रयोजनाः, और इन स्मृतियों के दो तरह के प्रयोजन होते हैं, कुछ जो है उसका तो दृष्ट प्रयोजन होता है और कुछ का जो है अदृष्ट प्रयोजन होता है। तो ये बात वेद में भी है, वेद में भी जो है ना दृष्टादृष्ट प्रयोजन है। दृष्ट प्रयोजन हो गया कि यज्ञ कर्म में जो है ना उसका विनियोग होता है वेद का, और अदृष्ट प्रयोजन हो गया कि वेद का पारायण करेंगे तो उससे पुण्य का लाभ होगा। इसी तरह से स्मृति में भी ये बात है कि स्मृति का कुछ जो स्मृतियाँ हैं ना, स्मृति का अंश है, उसका तो विनियोग होता है, व्यवहार में विनियोग होता है, कर्म कांड में, उपासना कांड में, ज्ञान कांड में भी उसका प्रयोग होता है, और कुछ जो है स्मृति का अंश वह उसका पारायण किया जाता है और उस पारायण करने से पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य मिलने वाली बात जो है पारायण के द्वारा, वो हो गया दृष्ट प्रयोजन, और याज्ञिक अनुष्ठान आदि में जो प्रयोग होता है वह हो गया दृष्ट प्रयोजन। तो ये स्मृतियाँ जो हैं उनका भी दृष्ट प्रयोजन भी है और अदृष्ट प्रयोजन भी है। तम एव आश्रित्या, तम का अर्थ करेंगे यहाँ वेदम, तो वेदम एव आश्रित्या, वेद का ही आश्रयन करके लिंगे भ्यो वेद विद भी प्रकाशिता, वेद विद भी महर्षि भी, माने वेद के जो विद हैं माने जानकार हैं, ऐसे महर्षियों ने क्या किया कि तम एव आश्रित्य, माने वेद का ही आश्रय लेकर के इन स्मृतियों को प्रकाशित किया है, इन स्मृतियों को जो है ना हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है। और उसका तरीका क्या है, तो कहा कि लिंगेभ्यः, लिंगेभ्यः का अर्थ करेंगे हेतुभ्यः, श्रुति अनुगुण हेतुभ्यः, माने श्रुति के अनुकूल जो हेतु है, श्रुति के अनुकूल जो लिंग है, उन लिंगों के आधार पर ही स्मृतियों को जो है महर्षियों ने प्रकाशित किया है, उसमें मनमानी नहीं की है, अपने मन से स्मृतियाँ मनगढ़ंत नहीं बनाई गई हैं, वेद को ही आधार लेकर के स्मृतियाँ बनाई गई। इसलिए आपने सुना होगा वेदोखिलो धर्ममूलम्, वेद जो होता है वह अखिल धर्म का मूल होता है, और धर्म का विचार कहाँ पर है? स्मृतियों में धर्म का विचार किया गया है। तो सबका मूल जो है, सबकी जड़ जो है, वह वेद है। और उस वेद में जो लिंग है, हेतु है, उन हेतुओं को देखते ही, उन हेतुओं के आधार पर ही जो है महर्षियों ने इन स्मृतियों को बनाया है। इस प्रकार से वेद प्रमाण होता है और श्रुति जो होती है वह वेद मूलक होती है। तो वेद मूलक होने के कारण स्मृति भी जो है वह प्रामाणिक मानी जाती है। स्मृति को भी हम प्रमाण मानते हैं क्योंकि स्मृतियाँ वेद मूलक हुआ करती हैं। तो ये जो सवाल था कि वेद ही प्रमाण है, स्मृति कैसे प्रमाण बनती है, उसका जवाब ये दे दिया कि वेद मूलक चूंकि स्मृति होती है, इसलिए वेद की तरह स्मृति भी जो है वह प्रमाण होता है। अब आठवीं कारिका को लेते हैं। तस्यार्थवाद रूपाणि निश्चित्य स्वविकल्प जाहा एकत्विनाम द्वैतिनां च प्रवादा बहुधा मताः। कहा कि ये जो है ना, अभी आपने कहा कि स्मृति जो है वह वेद मूलक होती है, तो वेद मूलक होती है। और आपने कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। आप फिर कहा एकमेव यदामनातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात्। माने वेद को आपने एक ही माना, तो जब वेद एक है और वेद मूलक स्मृति होती है, तो फिर स्मृति को भी एक ही मानना चाहिए। स्मृति को अनेक क्यों माना जाता है? और अगर स्मृति को हम अनेक मानेंगे तो उसमें जो मतभेद हैं, कुछ स्मृतियाँ कुछ कहती हैं, कुछ स्मृतियाँ कुछ कहती हैं, इस तरह से तो स्मृति जो है अप्रामाणिक हो जाएगी। तो इसी संदर्भ को लेकर के यहाँ पर ये कारिका बताई गई कि तस्य अर्थवाद रूपाणी। तस्य माने वेदस्य, वेद का ही जो है ना अर्थवाद के रूप में निश्चित या निश्चित करके माने निर्णय करके ऋषियों ने क्या किया कि अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने वेदांत आदि शास्त्र का, न्याय आदि शास्त्र का जो है ना सिद्धांत उन्होंने बनाया। अब यहाँ कुछ शब्द हैं उसको हम देख लेते हैं। तस्य तो वेदस्य हो गया माने उस वेद का ही, अर्थवाद रूपाणि यहाँ अर्थवाद रूप बताया कि ये, तो फिर अर्थवाद क्या है? तो अर्थवाद में क्या होता है, आपको हनुमान चालीसा आता होगा। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो सतबार पाठ कर जोई आ छूट ही संग महासुख होई। महासुख कहते हैं मोक्ष को। तो कहा कि 100 बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले कोई तो क्या होगा, उसको मोक्ष मिल जाएगी। अब थोड़ा विचार करके देखो, इतनी ही सस्ती अगर मोक्ष होती, मुक्ति अगर इतनी सस्ती होती तब तो सबको मुक्ति मिल जाती, सबको मोक्ष मिल जाती। अरे 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने में क्या जाता है? मैं समझता हूँ आधे एक घंटे में व्यक्ति या 1.5 घंटे में जो है 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेगा और फिर उसको मोक्ष मिल जाएगी। तो अच्छा, तो फिर ये कैसे कहा तुलसीदास जी ने कि जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे संग महासुख होई? तो तुलसीदास, इसका मतलब है कि तुलसीदास जी की बात जो है गलत है? ऐसा नहीं, गलत नहीं है, ये अर्थवाद है, इसी का नाम है अर्थवाद। अर्थवाद में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को की बहुत ही प्रशंसा की जाती है और किसी भी चीज़ की बहुत ही निंदा की जाती है। और उसके पीछे, प्रशंसा और निंदा करने के पीछे तात्पर्य ये होता है कि हम बहुत प्रशंसा करेंगे ना तो व्यक्ति उस काम को करेगा, और बहुत निंदा करेंगे ना तो व्यक्ति उस काम को छोड़ देगा। तो काम को करवाने में और काम को छुड़वाने में तात्पर्य होता है, इसीलिए बहुत स्तुति की जाती है किसी भी बात की और बहुत जो है निंदा की जाती है। तो ये छुड़वाने के लिए और पकड़वाने के लिए जो स्तुति और निंदा की जाती है ना, इसी स्तुति और निंदात्मक वाक्य जो है उसको अर्थवाद वाक्य कहते हैं। तो यह जो स्मृतियां हैं ये क्या हैं? अर्थवाद हैं। माने वेद के आधार पर जो है ना उसमें बहुत सारी बातों की स्तुति की गई है और बहुत सारी बातों की निंदा की गई है, और उसमें मतभेद सब भी हैं। तो वो मतभेद हैं क्यों? तो वो स्वविकल्प जाहा, अपने अपने विकल्प, विकल्प माने कल्पना कह लो या अनुभव कह लो, अपने अपने अनुभव के आधार पर ऋषियों ने जिसको जिस तरह से अनुभव किया उस तरह से अपने अपने अनुभव के आधार पर अर्थवाद वाक्यों का उन्होंने स्मृतियों में प्रयोग किया है और शास्त्रों में भी उसका प्रयोग किया है। उसी में कहा एकत्विनाम द्वैतिनाम च, एकत्वी कहते हैं वेदांती को और द्वैती कहते हैं नैयायिकों को, क्योंकि वेदांत दर्शन में कहा जाता है कि एक ही ब्रह्म होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वह तो मिथ्या है। तो जो एक को ही सच्चा माने, एक को ही सत्य माने, उसको एकत्वी कहते हैं। और द्वैती किसको कहते हैं, तो जो दोनों की सत्ता माने, जो परमात्मा की भी सत्ता माने और जीवात्मा की भी सत्ता माने, उसको हम द्वैती कहते हैं। तो न्याय दर्शन वाले जो हैं वह ईश्वर को भी सत्य मानता है और जीव को भी सत्य मानता है। इस तरह से वेद के आधार पर ही ऋषियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर कुछ तो एकत्व वाला जो है सिद्धांत बनाया, कुछ जो है ना द्वैत वाला सिद्धांत बनाया। एकत्व वाला सिद्धांत बनाया जैसे वेदांत दर्शन आदि को बनाया, द्वैत वाले सिद्धांत को बनाया जैसे न्याय दर्शन आदि को बनाया। तो लेकिन कुछ भी हुआ, स्मृतियाँ हो या वेदांत आदि हो या न्याय आदि हो, दर्शन हो, सबके जड़ में, सबके मूल में जो है वह वेद ही है और वेद को आधार लेकर के ही ये बनाया गया है, इसलिए ये सब भी प्रमाण है। हाँ, अर्थवाद जरूर है इसमें, हैं किसी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बोला है या किसी भी चीज़ को ज़्यादा ही जो है निंदा की गई है, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है, उसके तात्पर्य पर जाना है। और उसका तात्पर्य यही है कि इदम कर्तव्यम और इदम अकर्तव्यम। तो आज यहीं अति आठवीं कारिका पर जो है ना हम अपने पाठ को ब्रेक करते हैं। और एक बात, आप लोगों में किसी ने हो सकता है भ्रम फैलाया हो कि परीक्षा होगी 29 नवंबर से, तो वो भ्रम है, वो 29 नवंबर से कोई परीक्षा नहीं है। आप लोग प्रेम से आराम से पढ़ते रहिए, परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिए, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, परीक्षा अभी नहीं है।